नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तस्या अनुचरिता राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतां हि वर्णितां दूरे त्वया सीतापते मुहुः तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं विवर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं विवर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः तस्या उनका भगवान श्री रामचंद्र का अनुचरितां दिव्यचित राजन हे महाराज परीक्षित ऋषिभिः ऋषियों द्वारा तत्वर्षिभिः जिन्होंने सत्य को समझा है उनके द्वारा श्रोतां सुना गया हे निश्चित वर्णितां वर्णित कथित भूरि भूत त्वया आप द्वारा सीतापते है सीता के पति के मुहु बारंबार अनुवाद हे महाराज परीक्षित भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन सब पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में करूंगा। कृपया से तात्पर्य आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो उन तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे जो परम सत्य को जानते। भगवद गीता में 4:34 में भगवान उपदेश देते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, प्रश्न करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता है। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना चिंतन या भौतिक कार्यों के आधार पर किया जाता है किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से बहुत सुना है अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी भगवान रामचंद्र की कथाएं प्रसिद्ध थी और अनेक रामायणें भी प्रसिद्ध थी किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथित पंडितों की क्रियाओं ऐसे तथा कथित पंडितों की किताबों को नहीं जो डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है ऋषभिश तत्वदर्शी भी। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण का एक विशाल ग्रंथ है किंतु इन्हीं कार्यकलापों को श्रील सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रिया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या छुर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताधिबद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान। अपने पिता के वचनों को अक्षय रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राज्य पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक वन से दूसरे वन में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल हैं कि सीता जी की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान अथवा सुग्रीव भी थे। ये दोनों अर्थात श्रीराम और लक्ष्मण वन में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। सुरपणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया जिससे भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। रामनवमी महोत्सव के पावन अवसर पर आप सब भक्तों के मन में भगवान राम की क्रियाओं को सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई है, यह बहुत ही अच्छा है। मम पर्वानुमोदनम, भागवत में भगवान ने कहा है मेरे पर्व का अनुमोदन करना चाहिए। पर्व जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, रथ यात्रा, ये सब भगवान के पर्व है। भगवान ने कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, विशेषकर जब वे इस प्राकृत जगत में अवतरित होते हैं तो यह बहुत ही पावन पर्व है। इस रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र के विषय में कहना और सुनना यह बिल्कुल स्वाभाविक है और बहुत ही पुनीत कार्य है। यही कृष्ण भावना है वास्तव में, भगवान के विषय में अधिक से अधिक कहना और सुनना। तो श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत संक्षेप में श्री रामचरित का कथन किए। क्यों? इसका कारण है श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही कहते हैं, तस्यानुचरितम राजन ऋषभिश तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तत्वदर्शी ऋषियों ने भगवान सीतापति के अनुचरित का क्रियाकलापों का बहुत वर्णन किया है। भूरि वर्णितम, बहुत वर्णन किया है। रामायण शतकोटि अपारा, सैकड़ों करोड़ रामायण इस संसार में तो बहुत कम है, स्वर्ग में अधिक है। हम लोग पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पर 1,00,000 श्लोक का महाभारत है, परंतु स्वर्ग में 100 करोड़ का महाभारत है। इसी महाभारत में बात लिखी गई, देवताओं का कार्य ही है केवल भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना, मनुष्यों के जी में बहुत फालतू काम है, यह जाब वह जाब, ये करना वो करना, शाम सुबह थोड़ा सा स्मरण कर लेना समझते हैं बस यही काफी। देवताओं का और उच्चतर लोकों में निवास करने वाले लोगों का जीवन केवल भगवान के कथा कीर्तन में बीतता है, इसलिए वहां ग्रंथों का पब्लिकेशन बहुत अधिक है। वहां प्राय सब लोग बिजी रहते हैं सुनने में पढ़ने में। तो इसको कहते हैं भूरी वर्णितम, बहुत अधिक वर्णित। और त्वया मुह श्रुतम च, और आपने बारंबार सुना भी है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इससे सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष पहले से ही भगवान श्री राम के विषय में बहुत कथाएं प्रचलित। 5000 वर्ष पहले तो महाराज परीक्षित थे, तो बहुत पहले से ही भगवान श्री राम का यश प्रचलित है समाज में। प्रचलित से यह भी तात्पर्य है कि भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही लोकप्रिय है। आज तक यदि निष्पक्ष कहा जाए तो भगवान श्री राम का चरित्र जितना लोक में घर किया है उतना और किसी अवतार का नहीं, बहुत ही प्रिय। घर घर में स्त्रियां गीत गाती हैं, गांवों में हम लोग आज भी सुने जो भी गीत गाती हैं उसमें 80% गीत भगवान श्री राम के विषय में होता है। इतना सुंदर चरित्र। तो भगवान राम का चरित्र परीक्षित महाराज ने बारंबार सुना है। मुह और भूरी भी लगा सकते हैं, भूरी श्रुतम, श्रुतम के साथ भी भूरी लग सकता है और वर्णितम के साथ भी भूरी लग सकता है। भूरी का अर्थ है बहुत अधिक पर्याप्त, सुना है आपने और ऋषियों ने कहा है। तो आपने बारंबार इसको सुना है इसलिए मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कहने का आशय है। वैसे भगवान श्री राम की बहुत सी लीलाएं हैं, जैसा आपने सुना रामायण सतकोटि अपारा। और भगवान श्री राम की समस्त लीलाओं में सबसे प्रथम प्रधान लीला मानी जाती है वनगमन। आदौ राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृगा कांचनम। आदौ प्रारंभ में भगवान श्री राम का वर्णन किया जाता है, वे वन में गए। भगवान जो वैकुंठ बिहारी हैं, साकेत में रहते हैं, वे इस जगत में आकर कोई बहुत सुखमय भवन में, बहुत बड़ी बिल्डिंग में बड़े सुख से नहीं रहे, वे वन वन में घूमते रहे, एक वन से दूसरे वन में। तो भगवान की यह लीला बहुत ही हृदय स्पर्शी है। क्यों भगवान वन वन में घूमे, क्यों पृथ्वी पर शयन किए और वन में मिलने वाले कंद मूल फल भोजन किए। जो प्रभु सर्वेश्वरेश्वर हैं, समस्त देवताओं के पूज्य हैं, वे यहां आकर के जमीन पर सो गए बिना बिछौना के, ये कैसा लगेगा। उनकी सृष्टि में बनाया हुआ साधारण व्यक्ति स्लीपिंग बैग लेकर के चलता है, लेकिन भगवान कहीं भी गए कोई ओढ़ना बिछौना नहीं ले गए। अवश्य भगवान की इन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा संदेश है मानव जाति के लिए कि मनुष्य को भोगों में चित नहीं लगाना चाहिए, जैसे तैसे काम चला ले और अपने जीवन को ऐसा रखना चाहिए कि कृष्ण भावना को ग्रहण करने को योग्य हो। तो भगवान वैकुंठ छोड़कर यहां आकर जमीन पर सो रहे, कोई बिछौना नहीं, वन में पत्ता घास जो मिल जाता था उसी से सीता जी भगवान के लिए बेड लगाती थी, बिछाती थी, और दूसरे दिन वो वृक्ष और वो बेड सब छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ते चले जाते। तो खाने के लिए वन में ही जो कंद मूल फल मिलते थे वो भी सब सीजन में सब वस्तुएं नहीं मिलती थी, पहले से निश्चित भोजन नहीं था, किचन नहीं चल रहा था खूब अच्छा से, कोई ठिकाना नहीं रहता था कहाँ खाएंगे, कहाँ क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ऐसे तो ऐसा जीवन भगवान ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? वैसे तो भगवान की है इच्छा थी, बहुत बहुत उपदेश करना था अपने आचरण से, अपनी आचरित धर्म जीवे रे सिखाए, परंतु लोक दृष्टि से कुछ और ही बात थी। जैसा रामायण में लिखा गया है कि भगवान के पिताजी की तीन रानियां थी, महाराज दशरथ की तीन रानियां थी, बड़ी रानी नाम था कौशल्या और उसके बाद कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या के पुत्र हुए भगवान और वही भगवान अपने को एक्सपैंड किए भरत जी के रूप में, कैकेयी के गर्भ से जन्म लिए भरत जी। और ध्यान रखना चाहिए, कोई जीव नहीं है, विष्णु तत्व। तो अपने को चार रूप में भगवान ने प्रकट किया तीनों माताओं से, तो बहुत ही सजग होकर के कथा सुननी चाहिए, कैसे कैसे बात बिगड़ गई और भगवान को बन जाना पड़ा। बाह्य दृष्टि से हम कह रहे हैं, एक बार महाराज दशरथ के मन में एक जिज्ञासा हुई कि राम को युवराज बना देना चाहिए, राज्य दे देना चाहिए राम को और हमें भजन करना चाहिए भगवान का। एक बार की बात है, महाराज दशरथ राज सिंहासन पर बैठे थे और वे दर्पण देखने लगे, मिरर देखने लगे अपना मुकुट सीधा करने के लिए। तो मुकुट सीधा करने में उन्होंने देखा, श्रवण समीप भय सित केशा मन जरठपन अस उपदेश, कान के पास केश सफेद हो गए थे। आज भी हम लोग देखते हैं मनुष्य समाज में किसी का केश सबसे पहले यदि पकता है तो कान के पास, बारंबार शेविंग करने से वो पक जाता है। तो महाराज दशरथ ने देखा कि श्रवण समीप भय सित केशा मनहु जरठपन अस उपदेशा, तो उन्होंने ऐसा माना कि बुढ़ापा हमको उपदेश दे रही है। क्या उपदेश दे रही है? कि हे महाराज, अब आपका चौथापन आ गया, अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को राज दे करके आप भजन कीजिए। यद्यपि भगवान में जो उनकी परम आसक्ति थी वो भजन ही था, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि से राज छोड़कर वन में जाकर के भजन करना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने अपने पके हुए केस से यह शिक्षा लिया और उसी दिन वे गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किए। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, आप कैसे आए? कोई न कोई विशेष उद्देश्य होगा? महाराज दशरथ ने कहा, मैं चाहता हूं कि राम को राज्य दे दूं और मैं भगवान विष्णु का भजन करूं, तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई शुभ दिन है, मंगल बेला हो, खूब शोध करके शास्त्रों से बताइए, जिस दिन मैं राम को राज्य दूं उसकी तैयारी की जाएगी बहुत जोर से। राम को राज्य हैंड ओवर करना है तो बहुत बड़ा उत्सव होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस दिन राम को राज तिलक दिया जाएगा उस दिन अपने आप सबसे शुभ दिन हो जाएगा। ऐसे कहे। और वैसे मैं बता रहा हूं, महाराज देर करने की आवश्यकता नहीं है, कल ही सबसे अच्छा मुहूर्त है। कई बार लोक में बात प्रचलित है, लोग कहते हैं देखो किसी को संसार में कुछ भी ज्ञान नहीं है भगवान की इच्छा के विषय में, कल ही भगवान वन में जाना चाहते हैं। और गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं कि कल राज्याभिषेक का सबसे अच्छा दिन है और भगवान मन में सोच लिए थे कल वन में जाना। तो भगवान की इच्छा, भगवान के अभिप्राय का पता बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं होता है। वशिष्ठ जी जैसे महाज्ञानी भी कह रहे थे कल सबसे अच्छा दिन है, कल वृद्ध जी राज्य तिलक कोई जुटाना क्या है, अब तो राजर्षि हैं सब कुछ जुटा हुआ है। प्रसन्न हुए महाराज दशरथ, वे आए और खबर दिए कि अयोध्या को सजाया जाए इमीडिएटली, तत्काल ही सजाया जाए और बाजा बजना, फिर प्रसाद वगैरह के लिए तो सब बहुत ही पहले से सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, तो सब कुछ होने लगा। तो देवताओं के लोक में ये जब खबर गई और दुष्ट राक्षस कैसे मारेंगे, भगवान अयोध्या में रहेंगे तो फिर राक्षस चारों तरफ उत्पात करेंगे, भगवान तो अवतार लिए हैं रावण का वध करने के लिए, आय हाय क्या हमारा दिन ऐसे ही दुख में बीतता रहेगा। तो वे लोग मीटिंग किए, इष्ट गोष्ठी किए देवता लोग, और आपस में विचार करने लगे कि भगवान कैसे मारेंगे असुरों को, कैसे राक्षस का वध करेंगे। तो उन लोगों ने विनय किया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कहे हम क्या करें, तो सबने माँ सरस्वती का चरण पकड़ा कि माता जी आप सबके जिह्वा पर रहती हैं, वाग इंद्रिय पर रहती हैं, आप कोई उपाय कीजिए, आप कोई उपाय कीजिए। तब सरस्वती जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है ऐसा करना, भगवान को राज्य करने देना चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि राज्य वे करे लेकिन सारे राक्षसों का वध करके तब करे। तो वैकुंठ में राज्य करते ही हैं, यहाँ छोटा सा राज्य क्या करना है उनको। पहले भूमि का भार दूर कर लें इसके बाद। तो माता सरस्वती ने कहा ठीक है, तो वे आई अयोध्या में, तो देखने लगे कि किसकी जिह्वा पर बैठूं, किसकी मति को फेरूं जो इस उत्सव में बाधा दे सके। राजकीय तैयारी चल रही थी, पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी और इसमें बाधा देना था। तो सरस्वती जी खोजने लगे, कोई मिल नहीं रहा था, किसकी बुद्धि नष्ट करे। तो जिसकी बुद्धि पहले से ही नष्ट हो उसी को नष्ट करना था। अब देखते हैं जहां थूकने का स्थान होता है आदमी वहीं थूकता है, वो पिकदानी रहती है। कौन ऐसा कंडम है जिसकी बुद्धि को मैं इसमें बाधा देने के योग्य बना दूं। माता सरस्वती जी ने सोच, तो नाम मंथरा मंदमती कि चेर कैकई केर अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेर। तो बहुत सोच विचार कर सरस्वती ने देखा कि कैकई की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा, नाम मंथरा मंदमती, उसकी बहुत कम बुद्धि थी। तो अजस पिटारी ताई करी गई गिरा मति फेर, उसको अजस पिटारी बनाकर अपजस का बर्तन बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अजस पिटारी का अर्थ अपजस का भाजन। अब सब लोग यही कहेंगे कि मंथरा ने ऐसा किया, मंथरा ने ऐसा किया, बाधा दिया, तो मति फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर सजावा घर घर आनंद मोद बधावा। तो मंथरा ने देखा ये बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, अयोध्या सजाई जा रही है, बंदनवार बनाए जा रहे हैं, घर पर लिपाई पोताई सब चल रही है, पेंटिंग हो रहा है और घर घर में आनंद के बाजे बज रहे हैं। देखा तो उसे सहन नहीं हुआ, तो पूछने लगी अकस्मात कौन सा उत्सव है, राजा दशरथ तो इसको बताए नहीं थे। इसने पूछा, पूछे सी लोगन का उछाह, लोगों से पूछा क्या उत्सव है। राम तिलक सुनिभा उर्दाव, लोगों ने कहा कि राम का तिलक होने वाला है, राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। तो इसको सुनते ही आह करने लगे, जैसे लगा कि हृदय में आग लग गई, तो कलेजा जल गया है सुनते। जबकि यह संवाद अयोध्यावासियों को क्या पूरे ब्रह्मांड के जीवों को सुखी करेगा, परंतु मंथरा का हृदय जल गया। तो करे विचार को बुद्धि को जाती होई अकाज कवन विधि रात। वो सोचने लगी कि क्या करूं कि रात रात में ही काम बिगड़ जाए। आज रात भर ही केवल समय है, अगर कल सवेरा हो गया तो राम राजा बन करके ही रहेगा। तो करे विचार कुबुद्धि कुजाती, और वह बहुत नीच कुल की स्त्री थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब भगवान राम वन में चले गए, भरत जी आए ननिहाल से, तो पूछने लगे कि प्रारंभ किसने किया, राम के राज्य में बाधा डालने का काम चालू कहां से हुआ। तो पता लगा कि मंथरा। तो ये अब ये पूछने लगे कि मंथरा का आइडेंटिटी क्या है, कहां की है। तो कैकेयी ने उसको अपने घर में अपनी सेवा में रख लिया था, और ये भी नहीं पूछी थी कि उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, कहां की है। यह भी देखिए कैकेयी की बुद्धिहीनता, ऐसी स्त्री को अपनी सेवा में रख लिया था जिसका बैकग्राउंड कुछ पता नहीं था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। तो वो कुजाति कुत्सित जाति की थी, वो ठीक नहीं थी। तो सोचने लगे कैसे करूं कैसे करूं। तो राम मात पर गई बिलखानी, वो रोने लगी बिलखने लगी और रोती हुई गई। नहीं, भरत मात पह गई बिलखानी, भरत जी की माता के पास गई, जिसकी दासी थी उस स्वामिनी के पास पहुंची और रो रही। उसको अनमनी देखकर, उसकी वो रोने की दशा देखकर रानी ने पूछा, कैकेयी जी ने पूछा, का अनमनी हसी हसी कह रानी, अरे मंथरे तुम क्यों अनमना हो, तुम्हारा मन क्यों उदास है। फिर भी कुछ नहीं बोली। उत्तर दे न ले यू सासु, तो वो उत्तर नहीं दे रही थी। और नारी चरित कर ढारे आंसू, उत्तर नहीं दे रही थी। जैसे लगा कितना बड़ा दुख छा गया, पूछ रहे कहीं कहीं क्या बात है क्या बात है, तुम्हें क्यों दुखी हो। उत्तर दे न, उत्तर नहीं दे रही थी और दीर्घ निश्वास ले रही थी और नारी चरित करके आंसू ढार रही थी। नारी चरित कर ढा रही आंसू, आंसू बहा रही थी, ऐसा न कहकर कहा जा रहा है कि आंसू ढार रही थी। स्त्रियों के आंख में आंसू नहीं होता है, हाथ में होता है, जब चाहे तब रोने लगती और आंसू बहा देती। भगवान ने यह कौशल दिया है स्त्रियों को, ऐसे उनका हृदय भी कोमल होता है तो स्वाभाविक है आंसू आना। लेकिन अब वो आंसू ढारने लगी, मतलब अधिक आंसू आने लगे एकाएक। फिर भी रानी आगे कहती है, हसिकह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख आसमन मोरे। ओ मैं समझ गई, लगता है कि लक्ष्मण ने तुमको दो चार तमाचा जमाया है। इसे सिद्ध होता है कि लक्ष्मण जी कभी कभी उसको ठोकते थे, वो वैसी थी। इस उद्गार से पता लगता है कभी कभी पीटे होंगे और रोती हुई आई होगी कैकेयी के पास। इसी से तो कैकेयी उस ऐतिह्य को इतिहास को दोहरा रहे, लगता है कि दीन लखन सिखास मन मोरे, ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने कुछ शिक्षा दिया है। फिर भी वो नहीं बोल रही थी। तब रानी को भय हो गया, जब नहीं बोल रही थी तो कहीं कहीं डर गई कि कहीं राम का या मेरे पति देव का, भरत शत्रुघ्न इन सबका कोई अमंगल तो नहीं हो गया, क्या बात है, रो रही है। तो कहीं कहीं ने सोचा कि हमारे संबंधियों का कोई अमंगल हुआ होगा इसीलिए तो रो रही है। तो पूछती है, कुशल राम महिपाल, राम कुशल से है ना, सबसे अधिक प्रेम कैकेयी को भगवान राम से था। सबसे पहला समाचार पूछ रही है, हमारे प्रिय राम कुशल से है ना, हमारे प्राणनाथ पति देव कुशल से है ना, भरत कुशल से है, लक्ष्मण कुशल से है और शत्रुघ्न कुशल से है ना, क्या हो गया मंथरा, क्यों रो रही हो? वो तो रो रही थी राम का राज तिलक सुन करके, ऐसे वो रो रही थी। और कैकेयी को शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि ये रो रही है हमारे प्रियजनों के अमंगल से। तो सबसे पहले कैकेयी से मंथरा ये कहती है, रानी जी कुशल तो सबसे पहले आप राम का पूछ रही हैं, राम को छोड़ करके और किसी का, मतलब राम का कुशल है ये समझ लीजिए, और राम के जो प्रिय है उनका कुशल है। और क्या कुशलता है राम की, कि राजा दशरथ उनको राजा बनाने जा रहे हैं, राम को राज्य तिलक देने जा, तो राम को छोड़ करके और किसका कुशल है। और झूठ बोलती है, मैं अभी अभी कौशल्या के घर से आई हूँ, कौशल्या ऐठ कर चल रही है और कौशल्या से कोई भेंट ही नहीं हुई है, और भय कौशली विधियत दाहिन देखत गर्व रहत और नहीं। अरे मान लो किसी का पुत्र राजा होने जा रहा है तो इतना मत फूल जाओ, थोड़ा आनंद को दबा करके रखो। वो मंथरा कह रही है, ठीक है आनंद है उसके बेटा को राज दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि वो बिल्कुल सीमा से बाहर गर्भ हो जाए? थोड़ा मनुष्य को हिसाब से रहना चाहिए, मैं ये देख करके आई। तो मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि आपसे क्यों नहीं पूछा गया, आपसे पूछा जाता तो आप थोड़े मना करती राम के राज्य अभिषेक में। लेकिन देखिए कौशल्या चाल, राम दिया जा रहा है, किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मैं बता रही हूँ, ये मुंह मीठ निर्पर राउर सरल स्वभाव, ये राजा दशरथ है ये मीठे हैं, मुंह भर मीठा है आपको, लेकिन हृदय में माहुर भरा है, जहर भरा हुआ है, हृदय के बड़े कपटी हैं राजा दशरथ। आप विश्वास मत कीजिए, राउर सरल स्वभाव और आपकीदा स्वभाव है। अपने असल में जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा अपने दूसरों को सोच, आप सीधी स्वभाव की हैं, सरल हैं, इसलिए आप कपटी दशरथ की, ये आपके स्वभाव की विशेषता है। लेकिन है वो तो पता चलेगा आपको बाद में। इतना जब उस कैकेयी क्रोधित हो गई, एक बात से कैकेयी को प्रसन्नता हुई कि राम के राज्य अभिषेक की सूचना, लेकिन मंथरा ने जब राजा दशरथ पर और राम पर दोषारोप लगाया तो इससे उसको क्रोध हो, रानी ने रोक दिया कैकेयी को और कहा पुनियस कब ही हो, झगड़ा लगा रही हो, यदि पुनः ये बात तुम बोली तो मैं तुम्हारी जीभ उखड़वा लूंगी। कैकेयी की बहुत बड़ी शक्ति थी, वो रानी थी, वो कुछ भी कर सकती, वो गला काट सकती थी, जीभ उखाड़ लेना कौन बड़ी बात थी, अगर फिर जबान चलाई तो तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगी, फिर जीवन भर नहीं बोल पाओगी। इतने सुंदर वंश में परिवार में और तुम कलह उत्पन्न कर रही हो, वो तो चुप हो गए। तो फिर कहती है प्रिय वादिनी सिख बिन हो तो ही, अरे प्रिय वादिनी अर्थात प्रिय संवाद देने वाले, ये बहुत तुम प्रिय बोली हो कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, ये बहुत प्रिय बात है। तो हे प्रिय वादिनी, मैंने तुमको जो डांटा वो केवल तुमको शिक्षा देने के लिए, नहीं तो तुम्हारा कहा हुआ जिस दिन सत्य होगा उस दिन से मैं तुम्हें आंखों की पुतली बना करके रखूंगी। यदि राम का सचमुच में राज्याभिषेक कल होगा तब हमारे जीवन में तुम बहुत प्रिय रहोगी, क्योंकि सबसे पहले तुमने मुझे संवाद दिया। तो मैं तो ये विनय करती विधाता से कि अगली बार जब मैं स्त्री बनूं और भगवान मुझे मां बनने का सौभाग्य दें तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी पतोहू बने। कई कई का इतना प्रेम भगवान से था, लेकिन इस कथा का मूल आशय ये है कि गलत लोगों से सुनने पर चित बदल जाता है। कैकेयी की मति को सरस्वती ने नहीं फेरा था, मंथरा की मति को फेरा था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की मति को प्रवचन से फेर दिया। आप देखेंगे बातों में ही सब कुछ है। हरे कृष्ण आंदोलन में भी आपने देखा है बातें हम लोगों को मिलती हैं। प्रभुपाद जी ने इतनी पुस्तकें दिया है, ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं, उससे भगवान कृष्ण में मन गहराई से लग जाएगा, और ऐसी बातें हैं कि संसार में लग सकता है, कृष्ण को छोड़ सकता है। तो सुनने में बहुत सावधान रहना चाहिए। कैकेयी की यह बहुत बड़ी कमजोरी थी, बहुत बड़ी गलती थी कि वह मंथरा से सुनने लगी। जब उसने उसको घरफोरी कह दिया, डांट दिया, तो फिर सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन कहती है प्रिय वादिन सिख दिन है तो ही तो पर वही सपने हूं नहीं को। तुमको मैंने शिक्षा देने के लिए थोड़ा डांट दिया, सपने में भी तुम पर मैं क्रोध नहीं कर सकती, तुम बहुत अच्छी हो, सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती। और जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई, और तुम हमारे पति पर महाराज दशरथ पर दोषारोप कर रहे हो, लेकिन वे तो ठीक कर रहे हैं। इस सूर्यवंश की यही रीति है कि बड़ा भाई राजा होता है और छोटे भाई उसके सेवक होते हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई। वास्तव में ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कुल परंपरा से बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटे भाई उसके सेवक होते हैं। जब इस प्रकार की गृहस्थी चलती है तो बहुत ही अच्छी गृहस्थी मानी जाती है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, परिवार में सुख का आधार जो भी वर्णन किया गया है उसमें से एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, भाइयों में प्रेम। यदि भाइयों में परस्पर प्रेम हो तो वास्तव में बहुत सुख संसार में रहता है, और यदि भाइयों में कलह हो जाए तो नरक जैसी पीड़ा होती है। कैकेयी कहती है कि यह दिनकर कुल की, सूर्य कुल की यह रीति है कि बड़ा भाई राजा होता है, इसलिए महाराज जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और इस सुंदर संवाद को देने के लिए मैं तुमको वचन देती हूँ, तुम मांगो तुमको क्या इनाम चाहिए। अच्छा, ये सब कह करके फिर कहती है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभ कस्तोरे। लेकिन मंथरा मैं एक बात की जिज्ञासा करती हूँ, तुम्हारे वचन से मैं समझ गई कि तुमको राम के राज्य अभिषेक से बड़ा दुख पहुंचा है, तुम्हारे हृदय पर बहुत तकलीफ हुई है, क्यों? राम तो सबके प्रिय, हमारे तो प्राण से भी प्रिय है, तो ऐसे राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनकर तुमको क्यों तकलीफ है, तुमको क्या दुख है, ये सुनने की क्या आवश्यकता थी? जब उन्होंने कह दिया ये खराब है तो अब उससे फिर सुनना नहीं चाहिए था, यही कहीं कहीं गलती हो रही है। जब एक बार समझ गए कि कपटी आदमी है, बदमाश है, तो फिर उसे क्या सुनना है, ये सजग होना चाहिए। जब जान गए कि खतरनाक आदमी है, कई बार झगड़ा लगा चुका है, तो अब उससे क्या फुसफास करनी है, क्या फिर उससे समझा करना है, परामर्श लेना क्या। इतनी बड़ी रानी, महाराज दशरथ की पत्नी, और लगी कहने कि तुमको क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है। और जहां तक राम की बात है, मोपर करहिं प्रीति विषय की, ऐसे कहते हैं कि हम पर राम बहुत प्रेम करते, मुंह पर करें स्नेह विषय की, मैं करी प्रीति परीक्षा देख। मैंने परीक्षा करके देखा है कि राम में कि वे कौशल्या को अधिक मानते हैं या मुझको अधिक मानते हैं। मैं कई बार परीक्षा लेकर के देखी हूँ कि राम मुझको ज्यादा मानते हैं। कई कई ऐसा कह रहे। वास्तव में भगवान का चरित्र ऐसा था कि वे कौशल्या से भी अधिक कैकेयी को सम्मान देते थे। बचपन में भी जब वे छोटे बिल्कुल थे खेल कूद में, तो माता कैकेयी के ही गोद में चले जाते थे, ज्यादा उसी के घर में रहते थे भगवान बचपन में। तो कहती है कि मुंह पर कर ही स्नेह अभिषेक, मुझसे बहुत स्नेह करते हैं कौशल्या से अधिक, और कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सकल सुभाए प्यारी। कौशल्या के समान ही सभी से प्रेम करते हैं और उसने भी हमसे ज्यादा स्नेह करते हैं। तो मैं तो मनाती रहती हूँ कि कब राम राजा बने, कब राम राजा बने। तुमने जो कहा है मेरे लिए बहुत सुंदर संदेश दिया, और मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं सब तरह से, कौशल्या बिल्कुल मेरे अनुकूल है, क्यों तुम ऐसे बोल रही हो। लेकिन पूछने लगी कि कारण मोहि सुनाओ, क्या कारण है कि तुमको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। तो सुनिए मंथरा जी का प्रवचन, वो क्या कहती। मंथरा कहती है, अब कारण मत पूछिए, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछ कहूं जीव कर दूजी। रानी जी, मैं इतना सुंदर समाचार आपको दी, आपको उपाय बताना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी जीभ उखड़वा ली, तो अब तो दूसरी जीभ लगाऊंगी तब न बोलूंगी, अब मैं कैसे कहूं। अब कुछ कहूं जीभ करी दूजी, दूजी का अर्थ दूसरी बार कहीं से अब कोई प्लास्टिक या चाम की जीभ लगाऊंगी तब न बोलूंगी, ओरिजिनल जीभ तो आपने उखाड़ लिया, और सचमुच काट न ले। तो कहती बाण में और काम में कोई अंतर नहीं होता। इतनी बड़ी रानी कह दी कि जीभ उखड़वा लू, उखड़वा लूंगी, तो इसके मन में आ गया गरीब आफरीबा, कितनी बड़ी बात है कह दी। तो कहती है एक ही बार आज सब पूजी, अब बस एक ही बार में सारी आज सब पूज गई, आपने मेरा घर फोरी नाम रख दिया, अब तो कहने में भी मुझको डर लग रहा है। माफ कीजिए, जो मैं आकर के कह दी अब नहीं कहूंगी। लेकिन रानी जी, एक बात तो कह करके ही विश्राम लूंगी, कहा ही झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो ही मैं माई। माता जी, मैं आपको कड़वी लग रही हूं ना, मैं जब सत्य बात बोली तो मैं कड़वी लग रही हूं। सत्य बात क्या कि कौशल्या तुम्हारा जड़ उखाड़ना चाहती है, राम राजा बनना चाहते हैं, दशरथ कपटी हैं, इसको सत्य कह रही। जब मैं सत्य कह रही हूं तो आपको मैं कड़वी लग रही हूं, और जो लोग झूठ बोलते हैं कपट से, असत्य को ही सत्य बनाकर बोलते हैं, वे बहुत प्रिय आपको लगते हैं। ठीक है, तो मैंने भी आज से निर्णय लिया, आपसे सीखा मैं, हम हूं कहब अब ठाकुर सोहाती, नहीं तो मौन रहब दिन रात। आपको झूठ अच्छा लगता है, और मैं सपने में भी झूठ बोलना जानती नहीं, तब तो उपाय यही है कि आज से केवल झूठ बोलना चालू करूं, नहीं तो रात दिन मौन रहूं। सांच तो आपको अच्छा लग नहीं रहा, अरे बाप, देखिए इसकी बोलने की कला। इस तरह से किसी को कन्विंस किया जाता है, ये कह रहे मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, और नहीं बोलने में इतना प्रवचन कर रही। तो आप जो लोग झूठ साँच बात बनाकर बोलते हैं, वे लोग बहुत प्रिय लगते हैं, तो इसीलिए मैं भी आज से ठाकुर सोहाती करूंगी, हमेशा आपको प्रिय लगने वाली बात बोलूंगी, चाहे कितना भी झूठा हो, आज से नहीं बोलूंगी, नहीं तो मौन रहब दिन रात। दूसरे साधु महात्मा मौन रहते ही हैं, मैं भी सीख लूंगी, बिना बोले भी काम चला लूंगी, क्योंकि बोलने पर आपको दुख लग रहा है और आपकी शरण में मुझे रहना है, मेरी बात से आपको दुख न लग जाए इसलिए मैं मौन रहूंगी। और आपने पूछा कि क्यों राम के राज तिलक से दुख है तुमको, हमको कोई दुख नहीं है, हमारा कोई कलेजा चीर करके देख ले हमको कोई दुख नहीं, हमको दुख कुछ आगे की बात सोच करके हो रहा है।
अरे ये अभी ऐसे बोल रहे हैं जैसे उसकी सुनने की उत्सुकता और बढ़ जाए। आगे की बात समझ दुख मोहिवे, आगे की बात सोचती हूँ तब दुख हो रहा है। ये आगे की क्या बात कह गई तो सुन रहे थे, अरे आगे की क्या बात, आगे की बात मैं सोच रहा हूँ कि सोच भरत बंद गृह से लखन राम के नेप और लक्ष्मण महामंत्री बनेंगे राम के, उतना खतरनाक लड़का और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लक्ष्मण बनेगा। और अभी आपने कहा ना कि लक्ष्मण हमको मारता रहता है, तो वो मंत्री बनेगा राम का और आप जाएंगे नहीं आपके पुत्र कारागृह में जाएंगे। ये सब फालतू सोच रही है, कुछ भी नहीं होने वाला है, भरत जी तो राज तक नहीं लेंगे, भगवान राज नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे कह रही है। और राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, आप राजमाता बनेगी नहीं तो दासी हो जाएंगे, आप में बहुत अंतर हो जाएगा। यदि भरत राजा होंगे तो आप राजमाता कही जाएंगे, राजा की माँ, और नहीं यदि राम राजा बन गए तो आपको दासी होना पड़ेगा, कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस बात का दुख है अपने लिए नहीं, कौनृप होई हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब हो बके रानी। अरे कोई राजा हो, अब दासी छोड़ करके रानी थोड़े हमको होना है, कोई थोड़े हमको रानी बनाएगा। ऐसे ही विवाह नहीं हुआ, करी कुरूप विधि परबस की ना बाबा सुलनी लही जो तीन है, विधाता ने कुरूप बना करके दूसरे के अधीन कर दिया, नहीं तो मेरा भी किसी से विवाह हुआ होता मैं भी रानी रही होती, रानी नहीं तो कम से कम पत्नी तो कही जाती, लेकिन हाय रे विधाता। अब और रो रही होगी उस समय ऐसी बात का, करी कुरूप विधि परबस की ना, कुरूप बनाया कुबड़ दे दिया पीठ पर, तो अब क्या, तो दूसरे के यहाँ सेवा करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, तब भोजन चल रहा है। लेकिन इसमें हम दूसरे को दोष नहीं देते हैं रानी जी, बवा सुलूनी है, जो आदमी बोता है वही काटना पड़ता है, जो देता है वही मिलता है, तो हमने पाप किया होगा, हमने कुकर्म किया होगा, इसलिए भगवान ने हमको दंड दिया, कुबड़ दे दिया, और आगे भी तुमको दंड दिया जाएगा आगे भी ऐसा है। तो कहती है बवास लूनी लहिए जो दीना, जो व्यक्ति जो चीज बोता है वही काटता है। किसान खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, तो जो बीज बोए हैं वही फसल काटेंगे ना, और मनुष्य को वही मिलता है जो दिया। ये ध्यान से सुनना चाहिए, अभिलाषा करने से, इच्छा करने से, या यहाँ तक कि बहुत भारी भारी व्यापार करने से भी मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, मिलता है वही जो पूर्व जन्म में वो दिया है किसी को, किसी को दुख दिया होगा, इसीलिए भगवान ने हमको कुरूप किया, दासी बनाया, और जिसका भाग्य होता है, जिसने सुकृत किया है, वो इस जीवन में सुखी होता है। तो हम क्या करें, हमको अपने लिए रानी जी कोई दुख नहीं है, हमें तो बड़ा दुख आपके लिए है, और फोरे जोग कपार अभागा, भले हूँ कहत दुख रो रही लागा। रानी जी एक काम कीजिए, आप कोई हथौड़ा चाहे डंडा लेकर के हमारा सिर फोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक जीती रहूंगी तो आपके हित के लिए मैं कुछ बोलती रहूंगी और आपको बुरा लगेगा, इसलिए कपार फोड़ दीजिए, मैं मर जाऊं फिर बोल नहीं पाऊंगी। फोरे जोग कपार अभागा, मेरा अभागा कपार फोड़ने लायक है, क्या कहूं, भले हूं कहत दुख रौ रही लागा, अच्छा कहने पर भी आपको दुख लगा, क्या कहूं। जारे जोग स्वभाव हमारा, हमारे स्वभाव में आग लग जाए, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है, क्या तुम्हारा स्वभाव है तो कहती है अनभल देखने जाए तुम्हारा, आपका जहां पर अनभल हो रहा हो, आपकी जहां पर बुराई हो रही हो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे इस स्वभाव में आग लग जाए, आपका कोई काम बिगड़ता रहेगा और मैं देख लूंगी तो ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा खराब है कि आपका अहित देखा ही नहीं जाता, बर्दाश्त ही नहीं होता, क्या करूं? आपका अहित होने जा रहा था, आपके पुत्र को कारागृह में बंद करने की साजिश चल रही है, कौशल्या के बेटा को राज दिया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके प्रति घात किया जा रहा है, ऐसा मैं सोचने लगी तो इस स्वभाव में आग लग जाए। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा स्वभाव है। कपटी लोग इसी तरह से बोलते हैं, संसार में सावधान रहना चाहिए। कभी कभी तो लोग कहते हैं मुझे बहुत जरूरी काम था लेकिन मैंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, आपके लिए मैं आ गया, अब क्या करूं, अपना काम भले बिगड़ जाए लेकिन आपका काम होना चाहिए, ये मैं सोच। बोलने का एक तरीका होता है, क्या करूं। हमने सुना एक व्यक्ति को कहते हुए एक बार, पता नहीं लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं, हम आज तक सीखे ही नहीं कैसे झूठ बोला जाता। आसन दिए, आसन आसन दीजिए, आसन ध्यान नहीं क्षमा कर। तो मैं बहुत प्रयास किया कि एक बार झूठ बोले लेकिन झूठ मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, क्या करूं, बड़ा हैरान हूं। इस तरह के जिसको रात दिन केवल झूठ ही बोलना है वो आदमी ऐसा कहता है। बहुत कोशिश किया कि औरों की तरह मैं भी कुछ झूठ बोलूं लेकिन बोला ही नहीं जाता, क्या करूं। मैं भी चाहती हूं कि आपका अनुभव हो रहा हो, सह जाऊं, मुंह न खोलूं, लेकिन क्या करूं, मेरे स्वभाव में आग लग जाए कि आपका अहित मैं देख ही नहीं सकती। और इस पर कौन स्त्री नहीं विश्वास कर जाएगी, बताइए। और तर्क भी दे रही है कि भरत राजा होंगे तो मैं तो रानी बनूंगी नहीं, या राम राजा होंगे तो हमको क्या हानि है, अरे हमारा जो वेतन मिल रहा है, जो स्केल है, उतना ही मिलेगा, एक बार सरकारी नौकरी हो गई तो अब थोड़े बदलेगी। तो, अरे भरत जी होते तो हो सकता था एक आध सौ बढ़ा देते, लेकिन राम भी आप कहती हैं अच्छे हैं तो हम पर थोड़े रंज होंगे, राजा होंगे हमारा तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपका जो जीवन होगा आगे चल करके उसकी मुझे चिंता है, अपनी चिंता नहीं। जब इतनी बात कहा मंथरा ने तब कह कही कि कुछ कुछ मती पलट गई, और अब मंथरा की बात बहुत प्रिय लगने लगी। तो यहां पर कहा गया है कि तीय अधर बुद्धिरान, स्त्रियों की बुद्धि ओठ पर रहती है, अधर पर किसी के, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोल करके उनकी बुद्धि को फेर सकता है, कहने का मतलब ये, उनको अधर बुद्धि कहते हैं, ओठों पर ही उनकी बुद्धि निश्चित रहती है, अर्थात बात पर। तो पहले तो घरफोरी कह दी थी, क्या क्या कही, ऐसा करूंगी, एक कपटी कहेगी, ये वो कही, और अब कहने लगे सुनमन थरा बात फुरी तोरी, दहीनी आंख नित फरकई मोरी। मंथरा, हाँ, तुम्हारी बात सत्य है क्योंकि मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। ओ, अब आंख फड़कने लगी अब। और पहले जब कहती थी कि राम मेरा पुत्र बने, सीता मेरी पतोहू बने, अरे बहुत अच्छा हो रहा है, राम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अब दाहिनी आंख फड़कने लगी। देखिए, इसलिए स्त्रियों को तो और सावधान किया जाता है कि उन्हें सबकी बातें नहीं सुननी चाहिए जहां तहां। कोई ये व्यक्ति विश्वास करे कि अरे मैं समझदार हूं, क्या कोई मेरी मति को फोड़ सकता है, लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए अपने मन, बात का असर हो ही जाता है। आप अपने घर में मान लीजिए रात को सोए हैं, तो कोई आदमी आकर के कह दे कपाट बंद करके सोना, खुला मत रखना, वो आदमी तो संकित हो जाएगा, क्यों क्या बात है? तो वो ज्यादा ना कहे, कहे बस इतना ही कह दिया कि कपाट बंद करके सो, खुला मत। वो तो सोएगा क्या, कपाट बंद करके रात भर जगा रहेगा क्या हो रहा है क्या बात है, वो जगा रहेगा व्यक्ति कह कही के मन पर ऐसा गहरा असर हो गया मंथरा की बात का, कहने लगी हमारी दाहिनी आंख फड़कती रहती। हो सकता है फड़कता भी हो, क्योंकि आगे चलकर के वो विधवा होने वाली है। अभी कल के चार दिन के बाद ही, पांचवें दिन महाराज दशरथ शरीर छोड़ते, हो सकता है इसकी आंख फड़कती होगी, लेकिन इसका अर्थ क्या, वो मंथरा की बात सुनने के बाद फड़कना तुम्हारा रियलाइजेशन हुआ, उसके पहले नहीं, अथवा झूठ है ऐसे कह रही हो। वो कहती है सखी, उसको सखी कह रही, सखी मैं आज तक किसी को कोई दुख नहीं दी हूं, मैं याद करके भी ऐसा नहीं देख पा रही हूं कि मैंने किसी को कोई दुख दिया आज तक, लेकिन किस कारण से विधाता मुझको दुख में डाल दिया। हाय, हमारा पति हमारे क्यों विरुद्ध हो गया, हमारी बहन कौशल्या क्यों विरुद्ध हो गई, राम जो हमसे इतना प्रेम करते हैं वे क्यों विरुद्ध हो गए, ये हो गए, यह बात क्यों हुई, कह गई कि मति क्यों बदली। इसके पहले मंथरा ने एक वाक्य कह दिया कि रानी जी, राम आपसे प्रेम करते हैं, मैं भी जानती हूँ, आपके साथ ही रहे हूँ इसलिए मैं जानती हूँ, सही सच्चे हृदय से राम आपसे प्रेम करते हैं और आप भी प्रेम करती हैं, लेकिन रहा प्रथम अवते दिन बीते, समय पाव रिपो ही पीड़ते, वो समय बीत गया जिस समय आप राम की प्रिया थी और राम आपसे प्रेम करते थे, आप राम से प्रेम करती थी, वो दिन बीत गया, समय पाप कर अपने प्रेमी भी शत्रु हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर न्याय बता रही, लॉजिक बता रही है, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनुजल जारी करे सही छारा। रानी जी, सूरज कमल को पोषता है, जब सूरज उगता है तो कमल खिल जाता है, लेकिन कब तक सूरज पोषता है कमल को, जब तक कमल जल में रहता है, यदि जल न हो तो वही सूरज कमल को जला कर राख कर देता है। भानु कमल कुल पोष अनिहारा, भानु सूरज कमल के समूह को पोषता है, लेकिन बिनु जल जारी करे सो इछारा, बिना जल के सुखा देता है, जरा देता है। वही सूरज जो पोष रहा था एक दिन, वही सुखाने वाला हो गया। तो राम आपसे प्रेम करते थे, कौशल्या प्रेम करते थे, महाराज दशरथ आपसे प्रेम करते थे, सब ठीक है, लेकिन वो समय बीत गया, समय बलवान होता है। अब आप वो बात मत देखिए, अगर यही बात हुई होती, ये बात सत्य होती कि राजा दशरथ आपसे प्रेम करते हैं, राम आपसे प्रेम करते हैं, कौशल्या आपसे प्रेम करती है, तो फिर राजा दशरथ आपसे क्यों नहीं बताए कि राम को राज देने जा रहा हूं, जरा राजा दशरथ क्यों नहीं। तो रानी कहती है, तो कितना दिन हुआ अयोध्या को सजते सजते, तो मंथरा झूठ बोलती, कहती है भय पाख दिन सजत समाज, तुम पायो मोहिसन सुधियाज, 15 दिन बीत गया, 15वें दिन भी आपको खबर नहीं दिया गया, मेरे द्वारा खबर मिली है, बहुत बड़ी साजिश है कि कैकई को पता चल जाएगा तो भरत को राज देने के लिए कहेगी, बताइए आप ऐसा कर सकती हैं, वे लोग कपटी हैं इसलिए अपने कपट का आरोप आप पर कर रहे, बताने में क्या हर्ज था, 15 दिन से अयोध्या सज रही है, जबकि आज ही की बात है, आज ही अयोध्या सजाना चालू हुआ, लेकिन वो दुष्टा थी, वास्तव में बहुत खराब औरत थी, तो इसलिए वो इस तरह से बोल रही है, 15 दिन बीत गया। और महाराज दशरथ प्रत्येक दिन आपके पास आते हैं और मुंह नहीं खोले, आपको नहीं बताया कि राम को राज देना है, वो सोचते थे कि कहीं कहीं कुछ न कुछ है बाधा डाल दी। 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गया अयोध्या सजाते सजाते और हमको खबर नहीं दिया गया, नहीं
आपको संवाद नहीं दिया गया और आपके पुत्र को ननिहाल भेज दिया गया है। ये कौशल्या का प्लान था कि भरत को हटाओ यहाँ से। सब जोड़ जाड़ करके कह रही, भरत को हटा दिया गया कि भरत रहेगा तो कहेगा कि हम राजा बनेंगे। भरत को राज्य की इच्छा नहीं है, आप भी चाहते हैं कि राम राजा बने, लेकिन उन लोगों का कपट तो जरा देखो। आपको बताए क्यों नहीं, भरत को क्यों नहीं सूचना दिए? भाई को राज दिया जा रहा है तो दूसरे छोटे भाई को नहीं बुलाना चाहिए? घर में इतना बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है और दो भाई बाहर रहेंगे? इन ये कपटी लोग समझते हैं कि वो लोग आएंगे तो बाधा दें। इसी बात पर कैकेयी का चित बदल गया। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। एक कविता लिखा है श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने, बहुत उत्कृष्ट साकेत। तो उसमें कैकेयी के मुख से वे कहलवाते हैं, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। भरत जैसे पुत्र पर भी राजा दशरथ को संदेह हो गया, उसे घर भी नहीं बुलाया और घर में इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है और खास भाइयों को नहीं बुलाया गया। इसी बात से कैकेयी का चित्त विपरीत हो गया। अब राम के प्रति जो उसका प्रेम था वो द्रोह में बदल गया। कौशल्या के प्रति भी द्रोह हो गया, महाराज दशरथ के प्रति द्रोह हो गया। वो तो थर थर कांपने लगी, कहने लगी, नैहर जन्म भरब बरुजाई, जियतन करब सेवत सेवकाई। हाय हाय, विधाता मुझको क्यों दुख दिया, मेरे स्वजनों को क्यों विरुद्ध बनाया। लेकिन सुनो सुनो मंथरा, मैं नैहर चली जाऊंगी, अपने पिता के घर चाहे भाई के साथ रह लूंगी, भाई के घर में पिता के घर में जीवन पूरा कर दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। अरे तुमसे कौन सेवा करा रही है, ये सब मंथरा की चाल। नैहर जन्म भरब बरुजाई, जियतन करब सेवत सेवकाई। जीते जी सौत की तो सेवा नहीं करूंगी, भले यहां से चली जाऊंगी। और थर थर शरीर उसका कांपने लगा। वो कहती है कि जिस व्यक्ति को विधाता शत्रु के बस में जिलाता है, उस जीवन से मरण अच्छा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन कौशल्या की दासी नहीं बन सकती। इसका कारण यह अभी था, वो सोच रही है कि कैकेयी से सबसे अधिक प्रेम करते थे महाराज दशरथ। तो जो सबसे प्यारी स्त्री रही है, वह अपने से इन्फेरियर स्त्री की सेवा कैसे करेगी? मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ। और तो रोने लगी, राग पूर्वक रोने लगी, आंचल से आंसू पोंछने लगी। तब मंथरा को थोड़ा सा भय हो गया। मंथरा को ये भय हुआ कि कहीं हृदय की गति न रुक जाए कैकेयी की, शोक के मारे कहीं हार्ट अटैक हो गया तब तो मैं ही सीधे फांसी पर चढ़ाई जाऊंगी कि मेरी बातों से कैकेयी की ये दशा हुई। तो तुरंत रुकने लगी। देखिए बात बदलने का इसका फ्रेज, पहले तो विरोध की बात कही थी, कद्रू और बिनता की सौतिया डाह की कथा सुनाई थी, और अब अलग ही कहने, रानी जी आप शोक मत कीजिए, रोइए मत बिल्कुल। आपको मैं एक बात बता रही हूँ, मैं एक दिन एक ज्योतिषी के पास गई थी और ज्योतिषी से मैंने रेखा खिंचवा करके गणना करा करके और पूछा कि ज्योतिषी जी ये बताइए कि राम राजा होंगे कि भरत। तो बहुत दिमाग लगाया, बहुत गणना किया और अंत में कहा कि भरत राजा होंगे। ये सारी झूठी बात है, केवल तत्काल में उसका हृदय अवरुद्ध न हो, हार्ट अटैक न हो, इसके लिए वो ऐसा कहने लगे, सांत्वना देने के लिए, और उपाय भी बताएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सर्वज्ञ से ज्योतिषी से बात पूछ करके रखी हूँ कि भरत राजा होंगे। सबने कहा, एक नहीं कई ज्योतिषी से पूछा, और सब ज्योतिषी वास्तव में झूठे, किसी से नहीं पूछी थी। लेकिन जब बातों को सपोर्ट करना होता है तो इस तरह से कहना, तब तो उसको कुछ साहस हुआ और कहती है, मंथरा रानी जी आप मेरी बात सुन करके कठोर वचन से, कठोर संवाद से दस मिनट के लिए रोई ना, कौशल्या जीवन भर रोएगी और कह कही कि आंचल को अपने हाथ से पकड़ करके उसका लोर पोछ रहे, उसका आंसू पोछ रहे। कौशल्या रोएगी, आपको रोने की आवश्यकता नहीं, मैं भी कुछ हूं। और रानी जी, जब से मैंने ये संवाद सुना, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बास और नींद न जामिनी, जब से मैं सुनी कि राम को राज दिया जाने वाला है, तो मेरी तो दिन में भूख चली गई, रात में नींद चली गई, मैं उसी दिन से आज तक खाई नहीं हूं। जब से सुनी, अरे सुनी तो ये दुष्ट आज से ही है, लेकिन झूठ बोलकर कह रही, 15 दिन से मैंने पानी तक नहीं पिया, को भूख लग ही नहीं रही है और नींद हराम हो गई, सोई नहीं। झूठ बोला जाता है तो इस तरह बोला जाता है। देखिए, मैं यह प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि बाह्य रूप से भगवान के राज्य तिलक में जो बाधा पड़ी, उसमें कई कई कारण थे और कई कई कुसंग से बदल गई। कौन कुसंग अति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई, कौन ऐसा है जो कुसंग में नहीं नष्ट हो जाता। कैकेयी जैसी विदुषी महिला जो भगवान से इतना प्रेम करती थी, एक दिन इतना कर्कश हृदय हो गया कि राम को वनवासी के रूप में वन में कर दिया, हृदय नहीं पिघला, पति मर गए, क्या क्या दुर्घटनाएं हो गई, लेकिन बातों का ऐसा असर हो चुका था। मंत्रा कहती है कि मैं जब से ये सुनी तब से मेरी भूख चली गई, खाई नहीं हूं, और आगे मैं तभी खाऊंगी जब भरत को राजा के रूप में देखूंगी। कैकेयी ने कहा होगा कि कुछ तो नाश्ता कर लो, कुछ तो पी लो, तो भाई नहीं, हमको भूख प्यास है ही नहीं, मुझे इतना दुख है। उतना दुख तो कैकेयी को भी नहीं हुआ होगा, मतलब इसके वचनानुसार ऐसा कहती है, 15 दिन से सोई नहीं हूं, खाई नहीं हूं। तो जब वो कांपने लगी कैकेयी, तब ये कहती है कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, भरत राजा होंगे। तब कैकेयी कहती है, नहीं असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे भरत राजा हो सकते हैं, कैसे राजा हो सकते हैं। तब कहती है, देखिए संसार में सब कुछ हो सकता है, असंभव शब्द आपको अपने डिक्शनरी में रखना ही नहीं चाहिए, सब कुछ संभव है रानी जी इस संसार में, लेकिन बात यह है कि आप मेरी बात को स्वीकार करेंगी जो मैं कहूंगी, ये समझ गए कि मैं जो कुछ कहूंगी वो करेगी, तब शर्त करा रहे, आपको मुझ पर विश्वास है और मैं जो कहूंगी वो आप करेंगी। इतना सुनते ही कैकेयी कहती है, परऊ कूप तुव वचन पर, सकऊ पूत पति त्याग, कहसि देख दुख मोर बड़ा, कसन करब हित लाग, तुम कहोगी कुआं में कूदने को तो कूद जाऊंगी, कूप परऊ तुव वचन पर, कुएं में कूद जाऊंगी, अपने पुत्र को, अपने भतार को, अपने पति दशरथ को भी छोड़ दूंगी। तो अच्छी बड़ी बात बोल रहे, भरत के लिए ही इतनी चिंता, और कहती है कि तुम्हारी बात पर भरत को भी छोड़ दूंगी, पति को भी छोड़ दूंगी और तुम्हारी बात से कुएं में कूद जाऊंगी, मतलब मैं भी नहीं रहूंगी, तो फिर बात क्या पालन करेगी, इससे बात से मतलब क्या है। तुम्हारी बात से कुएं में कूदूंगी और पति को छोड़ दूंगी, पुत्र को छोड़ूंगी, तुम मेरे दुख को देख करके ये बात कह रही हो तो क्यों नहीं तुम्हारी बात मानूंगी। तो इसम हित न मोर संसारा, इस संसार में तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं, पति को तो देख ही लिया इतना कपटी, आज ही अनुभव कर रही है राम ऐसा वो ऐसा वैसा, तो इसम हित न मोर संसारा, इस संसार में तुम्हारे जैसा मेरा हित करने वाला कोई नहीं है। बहे जात कई भयस या धारा, मैं तो बही जा रही थी लेकिन तुम नौका की तरह आधार बन गई, मैं तो मर गई होती, बह गई होती धारा में, लेकिन मंथरा सखी तुमने हमको छान लिया, बचा लिया, तुम नहीं कही होती तो क्या क्या हुआ होता है। फिर आगे भी अभी तो गारंटी नहीं है क्या होगा, तो इस तरह से कह रहे। जब मंत्रालय ने कह दिया कि मेरी बात मानोगी, देखिए विचार करके। वही स्त्री जो कहती है कि अगर फिर से ऐसी बात कही तो मैं जीभ उखड़वा लूंगी, और अब कहती है कि तुम्हारी बात पर कुआं में गिर जाऊंगी, पति को छोड़ दूंगी और पुत्र को छोड़ दूंगी। किसी स्त्री के लिए पति और पुत्र से बढ़कर के तो कोई है नहीं। लेकिन कह गई कि कहने का आशय था कि तुम मेरे पुत्र से और पति से भी अधिक मेरी हितैषिणी हो। यही है दुर्बुद्धि। इस संसार में कुछ भगवान ने नेचुरल संबंध बनाया है पति का और पुत्र का। एक स्त्री के वे सहज प्रेमी होते हैं, लेकिन कभी ऐसा मन में आ जाए किसी स्त्री को कि ये तो हमारे पति से हमारे पुत्र से भी बढ़ करके हमारा हितैषी है, तो समझना चाहिए कोई न कोई धोखा वहां है। एक मैं नीति की बात कह रहा हूं। समाज में इस प्रकार की घटनाएं हुई, पति या पुत्र सहज हितैषिता से भरे होते हैं माँ के प्रति या पत्नी के प्रति, लेकिन आज कह कही कि यह दशा हो गई है, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यह हमारा सबसे बड़ा हित करने वाला, जबकि सबसे बड़ा अहित करने जा रही है। सबसे बड़ा अहित संसार में कैकेयी के लिए मंथरा थी, लेकिन मंथरा को ये कही जा कह रही है कि तो हिसम हित न मोर संसारा, बहे जात कई भयस या धारा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैं पति को छोड़ूंगी, पुत्र को छोड़ूंगी। आखिर मनुष्य की चेतना इस तरह से बदलती रहती है, तो कुछ चेतना स्थायी तो रहनी चाहिए ना। कुछ ऐसी चेतना रहनी चाहिए जो किसी की बात से इधर उधर ना हो पाए। किसी स्त्री का जितना हित पति कर सकता है उतना कोई नहीं करता है वास्तव संसार में, चाहे पिता हो या भाई हो या और अन्य बात, अन्य स्थान की बात तो छोड़ दीजिए। एक पति के द्वारा जो पत्नी को सहारा दिया जाता है, हित होता है उसका, वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, संभव नहीं है संसार। जक्ष ने पूछा है महाराज युधिष्ठिर से कि एक मनुष्य का ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र कौन है। तुम्हारा युधिष्ठिर कहते हैं कि अपनी पत्नी जो है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ मित्र है मनुष्य। तो ये कुछ नेचुरल संबंध होता है, और पति सब तरह से पत्नी को वस्तु देता है, भोजन देता है, घर बनाकर देता है, संतान देता है, रक्षा करता है। लेकिन पति के प्रति इस प्रकार की भावना आ जाए कि वो कपट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यही विनाश का कार्य चालू हो गया कई कई के जीवन में। महाराज दशरथ सपने में भी ऐसी दुर्भावना नहीं किए थे। और आज की ही बात थी, आज वो शाम को कैकेयी के ये संवाद देना चाहते थे। शाम को पहले उन्होंने मंत्री को सुमन जी को कह दिया जो अयोध्या सजाने के लिए, और सोचा कि शाम को जाऊंगा कैकेयी को, कौशल्या को, सबको एक खबर दूंगा। कौशल्या के पास जाने से भी पहले वे कैकेयी के पास ही जाने वाले थे, लेकिन इधर ये सब बातें हो गई। तो जब कैकेयी ने पूछा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, अब मैं क्या करूं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तभी कहती है कि मैं जो किसी से पूछी हूं और आप कहिए करने के लिए उपाय तब कहूंगी। तो कहने में यहां तक कह दिया कैकेयी ने, भरत शपथ मुहि सत्य कहूं। भरत जी का शपथ खा गए, भरत का पुत्र का शपथ खाकर कहती हूं कि तुम्हारी बात मानूंगी, तुम कहो। तब ये कहते सुनिए, सुनिए मैं उपाय बता रही हूं। आपको याद है एक दिन आपने बताया था कि महाराज दशरथ आपको दो वरदान देने के लिए कहे हैं, और आपने कह दिया था कि बाद में मांगूंगी। तो कहती हाँ हाँ याद है। एक बार महाराज दशरथ ने ये कह दिया था कैकेयी जी से कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम दो वस्तु मांग सकती हो मुझसे, दो बार मांगो, जो मांगोगी वो दूंगा। वो घटना ऐसी थी कि महाराज दशरथ स्वर्ग गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए। तो उस युद्ध में कैकेयी ने बहुत सहारा दिया था महाराज दशरथ को, इस कार्य से वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। तो पति से सहज प्रेम करने वाली थी, वो उसने मांगा नहीं। क्या मांगे महाराज, दशरथ से बढ़कर उसके लिए क्या था? एक पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई है होता नहीं। वो क्या वस्तु मांगे? उसने टाल दिया वास्तव में, कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं मांगना है। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न थे, कहे नहीं मांगो मांगो मांगो। तो इसने कह दिया कि ठीक है मांग लूंगी। वो बात को टाल रही थी, उसको तो याद भी नहीं थी कि हमारे पति ने हमसे दो बार मांगने के लिए कहा था। वो इतना प्रेम करती थी महाराज दशरथ। लेकिन कैकेयी के स्वभाव की एक कमजोरी थी, वह यह रहस्यमय बात अपने दासी से कह दी थी। जब पति से एकांत में बात हुई है, पति तैयार है सब कुछ देने पर, तो इस बात को अब दूसरे से कहने की क्या आवश्यकता थी? वो तो थर्ड क्लास की दासी से कह दी थी। बताइए, पति से इतनी गोपनीय बात हो रही है, कॉन्फिडेंशियल बात, और वो इस प्रकार से बहिरंग एक दासी से, नौकरानी से कह दी थी। ये कैकेयी के स्वभाव की कमजोरी थी, और कैकेयी के स्वभाव की कमजोरी नहीं है, स्त्री जाति की कमजोरी है। स्त्रियों के हृदय में कोई बात पचती नहीं, ये देखा गया। जो अपने पति से बात होनी चाहिए थी, वह बात एक दासी से कह दी थी, और इस आवेश में कह दी कि हमारे पति कितना हमको मानते हैं, हमसे बहुत प्रसन्न है, हमसे बहुत प्रसन्न है। यही श्रोता मिली थी कहने के लिए, यही मंथरा ही इतना क्वालिफाइड पर्सन थी सुनने के लिए, और किसी से कही होती? यदि नहीं कही होती कई कई इस बात को, तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। तब कहती है, सुनो आपको याद है हमसे आपने कहा था दो बार देने के लिए राजा दशरथ कहे हैं? हाँ। तो बस एक बार से भरत को राज्य मांगो और दूसरे से राम को वन में खदेड़ो, बस हो गया। खूब समझा करके भेजिए, समझा करके, और कही कि तब मांगना वर जब देने के लिए राजा दशरथ राम की सौगंध खा ले। तब भूपति राम शपथ जब कर जाए वचन न कराई, जब राम की सौगंध खा ले शपथ खा, नहीं तो बदल जाएगा। राम से उसको बहुत प्रेम है तो बदल जाएगा। और कही कि जाओ कोप गृह में, सहसा मत विश्वास करना, राजा दशरथ आएगा तो तुम्हारे चरण पर गिरेगा अपना मुकुट रखकर, पगड़ी रख करके, लेकिन मत मान जाना, ये मत समझना को प्रेम कर रहा है। मैं कह दिया, मैंने कहा ना कितना कपटी है, तो जाकर चरण में गिरेगा, प्राण प्यारी कहेगा, गजगामनी कोकिल बहनी क्या क्या कहेगा, लेकिन मानना मत, कुछ भी कहेगा। तो इस तरह से समझा बुझा करके, पट्टी पढ़ा करके, और भेज दिया कोप भवन में। कोप भवन का अर्थ क्रोध भवन। राजाओं के यहाँ एक घर बना होता है जिसमें उसके परिवार के लोगों को कोई तकलीफ होती है, तो वे लोग वहाँ या तो पत्र डाल करके छोड़ देते हैं या पर्सनली जाते हैं। तो राजा 24 घंटे में एक बार देखते हैं कि हमारे इस स्वजन को ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो उसके अनुसार व्यवस्था करते, उसको कोप भवन कहते। तो राजा दशरथ जब गए कैकेयी को संवाद देने के लिए, तो वहां पर किसी दासी ने कहा कि महाराज दशरथ तो कोप भवन में गए और मंथरा भी वहीं थी, वो नहीं बोली। मंत्रा डर रही थी कि अगर मैं बोलूंगी तो राजा दशरथ कहेंगे कैसे कोप भवन गई, तो कहीं बात न खुल जाए कि इसी में भेजा है, इसीलिए वो चुपचाप रही, वो नहीं बोली। दूसरी दासी ने कहा कि महाराज दशरथ कोप भवन में गए, तो महाराज दशरथ सीधे कोप भवन गए वहां से, इस सुंदर संवाद देने के लिए कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम मुझसे बहुत आग्रह करते थे कि राम को राज दीजिए, राम को राज दीजिए, तो हे प्रिय तुम्हारा मनोरथ कल पूरा होगा, ये मैं सुंदर संवाद देने के लिए। लेकिन जब सुने कोप भवन में गई है, तो महाराज दशरथ के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्या बात है, इस अवसर पर क्या हो गया, सूख गए बिल्कुल, क्या हो गया। जिनके शरीर पर वज्र मारा गया था, शूल वज्र आदि सहने वाले थे, वे भी कामदेव के बाण को सह नहीं पाए और गए तो देखे तो वो बिल्कुल मोटा और पुराना कपड़ा पहन करके जमीन पर लेटी हुई है, जो कभी पलंग से नीचे नहीं उतरती थी और रेशमी साड़ी हमेशा पहनती थी, वो मोटा साड़ी और वो भी पुराना पहनी थी, जमीन पर लेटी हुई थी। महाराज दशरथ गए, इस दुर्दशा को देख समझ नहीं रहे थे कि क्या क्रोध है, इतना समझ गए कि मेरे प्रति ही कोई क्रोध है। तो जाकर सबसे पहले वे प्रणाम किए, समय पर सब करना पड़ता है। तो वे राजा है लेकिन अब क्या करे, जाकर प्रणाम किए और वो देख रही थी लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, वो हरे कृष्ण नहीं की। ये जो कुछ करना था कि दूर से प्रणाम किए लेकिन वो चुपचाप रही। तो इसके बाद दोनों हाथ से चरण छुए, चरण छू करके पूछ रहे हैं, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, हे प्राण प्रिय किस कारण से रिसानी, किस कारण से तुमको रोष है, किस कारण से क्रोध है। तो ऐसा कह करके जब चरण छूते हैं तो चरण को ही झटकार दी, जैसे छुओ मत। और फिर कहते हैं, तुम्हारी बोली बहुत सुंदर है, कोयल जैसी बोलती हो, तो जरा मैं सुनना चाहता हूँ। अरे जरा चल करके दिखाओ, तुम हाथी जी की चाल जैसी चलती हो, गजगामिनी, तुम्हारी आंखें ऐसी सुंदर हैं। वास्तव में कह के बहुत सुंदरी थी। तो इस तरह से वर्णन करने लगे, हाथ छुए तो हाथ झटकार दे, ये कर दी वो कर दी। और ये लगे कहने राजा दशरथ, प्रिय तुम जिस काल का मनोरथ करती थी, राम को राज देने की बात करती थी, कल ही राम को राज देना है, उठो सुमंगल साजो, अच्छी साड़ी पहन लो, तुम्हारे हाथ से राम की आरती की जाएगी, तुम हाथ से मुकुट पहनाना, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया, तुम्हारे खुशी का संवाद लेकर के आ जाओ। यह सुनी तो वो तो मंथरा की बात का रियलाइजेशन की, और उसकी छाती में ऐसी पीड़ा हो गई जैसे लगा कि पका हुआ घाव कोई छू दे थोड़ा। अब तक तो केवल सुनी थी मंथरा के मुख से, अब इनके ही मुख से सुने कि राम को राज देने जा रहा। दलक उठे उसने हृदय कठोर, जन छुई गये पाक बरतोर। एक घाव होता है थोड़ा, उसको बरतोर घाव कहते हैं, कहीं बाघ टूट जाता है तो स्थान बना लेता है, और पक जाए तो छूने पर पीड़ा होती है। जन छुई गये पाक बरतोर, हृदय में दाह हो गया, दुख हो गया सुनकर राम का राजा। तो उठो 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 उठो, तो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तुमको मैं और क्या दूं, क्या दूं, मांगो, तुमको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, मांगो मांगो मांगो। और मांगते मांगते, मांगने कहने पर कहते हैं, राम की शपथ खाकर कहता हूं कि मुझे तुमसे प्रेम है। और तब धीरे सा उठ करके कहती है, बैठे बैठे जमीन पर ही, मांग मांग पै कहु पिए, कबहू न देहु न ले, देन कहयु बरदान दऊ, ते उपावत संदे। हे प्रियतम, कपट से बोल रही, हृदय में दुख है लेकिन बाहर से प्रियतम कह रही, हे प्रियतम आप मांगने मांगने को तो बहुत कहते रहते हैं लेकिन कभी कुछ दिए न लिए, ऐसे ही फालतू बोलते रहते। मांग मांग पै कहूं, तो बहुत मांगने को कहते। आपको याद है कि कई वर्ष पहले दो बार मांगने के लिए कहे थे, पहले तो वही मिलना कठिन है, नया बर कहा से थे, फिर भी राजा दशरथ अभी नहीं समझ रहे थे कि क्या मांगेगी, कितने घात से मांग रही है। बहुत मांगने मांगने को कहते, ये आपको रोग है, मांगो मांगो कहते रहते। कभी कुछ दिए नहीं है, दो वर देने के लिए कहे थे वो भी देने में संदेह है, नया क्या मांगू। कहने का मतलब है वही पुराना दे दीजिए, आगे कहेगी तब कहते हैं ओ मेरा भुलक्कर स्वभाव है। सही में हाँ याद आ गई, मेरा भूलने का स्वभाव, मैं भूल गया। दो के चार मकले, अरे तुम दो के बदले 200 मांगो, मेरा भूलने का स्वभाव है, भूल गया। बहुत अच्छा किया तुमने, याद दिला दिया। तो तुमको राजभवन में पलंग पर बैठकर मांगना चाहिए था, इस तरह लौटने की क्या आवश्यकता थी। अरे प्रिय वरदान की बात कह रही हो, मांगो माथ देव अब तो ही, तुम अपनी मेरा मस्तक मांगोगी तो मैं अभी काट करके दे दूंगा। वरदान कौन बड़ी चीज, कई तो सोच रहे थे हाँ हमारे रेंज में आ रहा मस्तक। अरे भर की बात कर रही हो, मस्तक दे दूंगा, मेरा पुत्र मेरा धन मेरा राज सब कुछ तुम्हारे चरणों का सेवक, तुम्हारे चरणों में हाजिर, तुम मुझे प्राण प्रिया, तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूंगा, अपना जीवन अपना धन अपना राज्य। वास्तव में महाराज दशरथ इस तरह कहके को मानते थे, परंतु यहीं पर विंबार खा गए। अपने आदमिया से हार जलाया आदमी, मनुष्य सब जगह जीत जाता है लेकिन अपने आदमी से उसे हारना पड़ता है। महाराज दशरथ आज अपनी पत्नी से मात खा गए। कोई भी व्यक्ति इस तरह से कमजोर है, जैसे महाराज दशरथ ने कह दिया कि कुछ भी मांगो मैं तुमको दूंगा, पहले दो वरदान, पर ऐसी बात किसी भी पति को भूलकर पत्नी के लिए नहीं कहना चाहिए। कुछ शर्त रह करके ही वर देना चाहिए, ये नहीं वो जो कुछ मांगे वही दे दे, नहीं, इतना कामी नहीं हो जाना चाहिए, इतना स्त्री के बस में नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारा दास हूँ और जो मांगो वो कर दूंगा, स्त्री पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने को देना है तो भगवान राम के हाथ में देना चाहिए, कृष्ण को देना चाहिए, कृष्ण जो कहेंगे वही करूंगा, ये नहीं कि तुम जो कह दो वही करूंगा, और वो कह देगी कि अपने लड़के को बनवास दे दो तब क्या होगा। राजा दशरथ जो अपने को बिल्कुल समर्पित कर रहे हैं यह गलत। प्रेम का यह मतलब नहीं होता है कि 100% स्त्री की इच्छा पर ही चलना चालू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने वैदिक इतिहास के आलोक में ये सब बातें सीखते हैं, सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति संसार में, चाहे पत्नी हो भाई हो कुछ भी हो, एक सीमा तक ही समर्पण किया जा सकता है, पूरा पूरा नहीं। ये कहने का अधिकार नहीं था कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, वो कह देते कि मैं तुमको ये धन दूंगा अलंकार दूंगा ये दूंगा वो दूंगा, इसमें से कोई मांगो, लेकिन जो इच्छा हो मांगो, तब तो वही तो इच्छा हुई कि मरना पड़ा दे करके। महाराज दशरथ मरे 4 दिन के भीतर। इस तरह से कहो तुम कुछ भी मांगो कुछ भी मांगो कुछ भी मांगो, तो जब इन्होंने राम की शपथ खाया 3 बार और कह दिया कि तुम जो मांगोगे दूंगा, राम की शपथ खा करके कहता हूं, मेरा भूलने का स्वभाव था, भूल गया, जल्दी करो उधर राजा अभिषेक की तैयारी हो रही है, तुम सज धज करके तैयार हो। तब कहती है सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय तुम मेरे मन में जो अच्छा लग रहा है वो ये दीजिए। राजा दशरथ समझे कि बिल्कुल अनुकूल हो गए, तो वस्तु की इच्छा थी तो वहां नहीं मांग लेती, यहां आने की क्या जरूरत थी, क्या तुमको विश्वास हो गया कि मैं नहीं दूंगा तुमको। अब कहती है ऊपर से हंस रही है, भीतर में तो अभी जलन कपट मैं व्यवहार कर रही है। हे प्राण प्रियतम मेरे हृदय में जो अच्छा लगता है सुनिए, दे हूं एक बार भरत ही टीका, एक बार तो ये दीजिए कि भरत को राजा बनाइए। महाराज दशरथ बहुत खुश हुए इस बात को सुन करके और कहते हैं ओहो हमारे दृष्टि में भरत और राम में कोई भेद नहीं है, भरत तो राज लेगा ही नहीं इसलिए मैं उसको नहीं दे रहा था, और अपने कुल की जो रीति है इसलिए मैं राम को राज दे रहा था, राम तो राज के भूखे नहीं। बहुत अच्छा ठीक है, कुछ दिन के बाद अब भरत राजा होंगे, बुलाया जाएगा उनको तो उनको राज दिया जाए। लेकिन कहते हैं तब इन्होंने कहा दूसरा दूसरा वर मांगो, दूसरा वर मांगो। तो कहते हैं तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। और इतना सुनते ही महाराज दशरथ गिर पड़े सिंहासन से, मूर्छित हो गए। तपस्वी के वेश में उदासीन रह करके, अर्थात घर से एक सामान नहीं ले जाएंगे, एक पैसा नहीं ले जाएंगे, तपस्वी के वेश में राम को 14 वर्ष वन में रहना होगा। महाराज दशरथ तो गिर पड़े बेहोश होकर के, मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद जब मूर्छा टूटी तब वे लगे कहने, ये कहने लगे कि देखो नाहीन राम राज के भूखे, राम राज्य के भूखे नहीं है। राम है वो तो मैं जानता हूँ कि राज देने को कहूंगा तो वे लेंगे नहीं। मुझे राम के विरह में मत मारो, मैं राम के बिना उसी तरह नहीं जी सकता हूँ जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती। जिए मीन बरुबार बिहीना, फनी बिनु फनी जिए जिमे दीना। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है, मैं अपना स्वभाव कह रहा हूँ कि राम के बिना मैं नहीं जी सकता। भले मणि के बिना सर्प जी जाए, जल के बिना मछली जी जाए, लेकिन मैं राम के बिना नहीं जी सकता। तुम राम को वन में मत भेजो, यहीं अयोध्या में रहने दो, सुख से भरत को राजा मैं बना दूंगा। लेकिन राम को वन में मत करो, नहीं तो मैं ही नहीं अयोध्या के कई लोग मर जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या किया? तुम तो हमेशा प्रशंसा करते थे राम की और राज देने की बात करते थे, आज कैसे बदल गई, ये हो गई, वो हो गई। इतना सुनते ही कई कई अब पूरा खुल गई, कहते हाँ मैं तुमको भी जानती हूँ कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। यदि मंथरा ने मुझे नहीं बताया होता तब मुझे क्या पता था कि तुम ऐसी कपट की चाल मेरे साथ चल रहे हो। बिल्कुल दांतों से ओठ दबा करके और आंखों को तिरछा करके कहते कपटी कहीं के, तुम्हारा सारा प्रेम झूठा था। ऐसे बोल रहे महाराज दशरथ तो बिल्कुल सीधे साधे, जो भीतर बात थी वही बाहर थी। इन कई कई डांटने लगी, तुम बहुत सत्यवादी बनते हो ना। महाराज दशरथ ने कह दिया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। उन्होंने वर देने के पहले कहा था कि प्राण चला जाता है रघुकुल में लेकिन वचन नहीं जाता है, तुम मांगो। और जब कहने लगे कि राम को राज वन, राम को वन में मत भेजो मत भेजो, तब कहती है उस समय रघुवंशी थे ना, अब कौन वंशी हो गए। कहते थे प्राण जाई बरु वचन न जाई, तो क्यों वचन बदल रहे हो। राम को वन में भेजना होगा। और लास्ट में इतना तक कह दिया, प्रात होत मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए मोर मरण राउर अजस निरप समझिए मनमा। यदि सवेरे होते होते कल राम वन नहीं गए तो मैं जहर खा करके मरूंगी और तुम्हारा अपजस, झूठ बोलने का जो अपजस, वो सारे संसार में फैले कि वचन दे करके भी नहीं पाऊंगी, मैं तो मरूंगी, मैं तो जी नहीं सकती। सवेरे होते होते राम को वन में भेजना है, होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए। इस तरह से कही, यहाँ तक बातें सब आकर के रुके। महाराज दशरथ पुनः पुनः मूर्छित हो जा रहे थे, इसी में रात बीत गई, सवेरा हुआ। महाराज दशरथ तो प्रतिदिन 3:30-4 बजे जग जाते थे, आज कोप गृह में रहे तो वहाँ राजभवन में सब बंदी मागध आदि गीत गा गा कर महाराज को जगा रहे थे। महाराज तो वहां थे नहीं, कुप भवन में थे। तो लोग सोचते हैं क्यों नहीं आज जगे, क्या बात है, आज तो और अर्लियर जगना चाहिए था, आज तो फेस्टिवल है रथ, आज तो और जल्दी जगना चाहिए था, आज क्यों विलंब किए। तब सब लोगों ने मिलकर महाराज सुमंत को भेजा, मंत्री को, कि आप जाइए देखिए राजा जी कैसे। तो वहां पर गए तब कई तड़क करके बोल उठी, सुनिए सुनिए, इन्होंने मुझे वर देने के लिए कहा था, आप जाइए और राम को हाजिर कीजिए। भरत को तो राज दिया जाएगा, उसमें देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन राम को कल वन में जाना है। उसने कहा नहीं सुमंत से, राम को भेज दीजिए, राम का दर्शन करने के लिए राजा जी गिरे हुए, ऐसे बोलते। तब सुमंत जी गए और उधर से भगवान को लेकर के आएंगे। हम लोग दूसरे सिटिंग में सुनेंगे किस प्रकार भगवान बन जाने के लिए प्रस्तुत। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पता नहीं, रहस्य से क्या हो सकता है, जवानी का मुख्य समय वन में बीत जाए। ऐसा हमने सुना है कि सरकार जो आजीवन कारावास देती है तो कंटिन्यूअस कोई जेल में रह जाए तो 14 बरस ही होता है। मतलब जवानी का मुख्य अंग वन में बीत जाए, इसके बाद देखा जाए। और कोई 14 संख्या का क्या अर्थ होगा दूसरे लोग जानते होंगे, हमें पता नहीं।